भी वो तो उसी दिन करके उनको देना था चैनल को, तो क्या कर सकते हैं। तो फिर वहां पे मैंने साउंड इंजीनियर और मैं मिलके वो स्क्रिप्ट लिखी लिखी, मतलब बैठ के आगे जाके या बाजू में जाके बैठ के नहीं लिखी, हर एक सेंटेंस जैसे जैसे आता गया उसका ट्रांसलेशन करते गए, लिखते गए और फिर वो डब करते गए, ऐसे करके 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 पूरा एपिसोड किया। तो ये जो कोऑपरेशन है दोनों में, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा मैंने कहा कि डबिंग करते समय आपकी टेल मैच होनी चाहिए, आपकी लेंथ मैच होनी चाहिए, आपके इमोशंस मैच होने की चाहिए, वहाँ के वो पर्दे पर क्या दिखा रहा है इमोशन वो मैच करना, ये 50% काम रहता है पर्दे पर, जिसने काम किया उसका और जिसने आवाज़ दी उसका। क्योंकि हम लोग टॉकीज़ के ज़माने में हैं, ना कि म्यूटेड पिक्चर के ज़माने में, मूक चित्रपट जिसे बोला करते थे उसके ज़माने में नहीं है हम। तो अगर टॉकीज़ के ज़माने में हैं तो जो बोला गया है वो हमें सुनाई देना चाहिए, और वो उसी ढंग से सुनाई देना चाहिए जिस ढंग से उस पर्दे पर साकार किया गया है। तो इसीलिए साउंड इंजीनियर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ये दोनों की एक परीक्षा रहती है डबिंग करते समय। ये दोनों अगर कोऑपरेशन अच्छी तरह से रखें, और साउंड इंजीनियर ये ध्यान में रखें कि भाई ये इमोशंस अच्छी तरह से निकाल रहा है या निकाल नहीं रहा है, तो उसको उस तरह से समझाना चाहिए कि भाई वो वहाँ पे दुख में है, या वहाँ पे रोमांटिक सीन है, या वहाँ पे खुशी है, या बच्चे से बात कर रहा है, या ये बूढ़ा है या बूढ़ी है या कोई छोटी सी बच्ची है, तो उससे कैसे निकालवाना है। ये अगर साउंड इंजीनियर अच्छी तरह से जानता हो पहले से, और बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार साउंड इंजीनियर ने भी वो पूरी तरह से फिल्म नहीं देखी रहती है, तो वो साउंड इंजीनियर अगर पूरी फिल्म पहले देखे, उसकी मार्किंग कर ले कि भाई यहाँ यहाँ ये करना है, तो बहुत इजी हो जाता है डबिंग आर्टिस्ट के लिए भी कि कहाँ कहाँ क्या क्या उसको करना है, ये साउंड इंजीनियर को पता है और वो वैसे के वैसे पास ऑन कर देता है आर्टिस्ट को, तो बहुत इजी पड़ जाता है। तो ये चीज़ें अगर साउंड इंजीनियर ध्यान में रखे, तो डबिंग करते समय डबिंग आर्टिस्ट को कोई कठिनाई नहीं होती, बहुत इजी हो जाता है।